Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Ruchi Soya Industries Limited conference call hosted by Antique Stock Broking regarding the acquisition of the food retail business of Patanjali Ayurved Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Abhijeet Kundu from Antique Stock Broking. Thank you, and over to you, sir.
Yeah, participants, welcome to the Ruchi Soya conference call. This is regarding the acquisition of Patanjali Ayurved Limited's food retail business by Ruchi Soya. We have with us the management, Shri Baba Ramdev Ji, and the management of Ruchi Soya, represented by Mr. Sanjeev Asthana, who is the CEO, and Mr. Kumar Rajesh, who is the Head Strategic Finance. We will start with the initial remarks from the management, and then we can proceed with the Q&A. Over to you, sir.
पूज्य स्वामी जी से आई विल रिक्वेस्ट कि स्वामी जी आप ओपनिंग हमारे पास करीब 98 से 100 लोग जुड़े हुए हैं स्वामी जी आप अगर शुरुआत करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा आपका आशीर्वाद रहेगा और आपका डायरेक्शन मिलेगा
नमस्ते मुझे सब सुन पा रहे हैं ठीक से
यस सर यू आर ऑन
यस थैंक यू तो पहले तो सभी इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत मेरा प्रणाम माय प्रणाम टू ऑल इन्वेस्टर्स And today is a historical day for Ruchi Soya. We are doing our track record, our performance, our futuristic plan. We did so many things in Ruchi Soya. First, our turnover, our EBITDA, our total turnaround of our business. And corporate governance, professional management, and transparency, accountability, ownership, everything is going very well in Ruchi Soya. And now, today is a very special day for Ruchi Soya. Acquisition of Patanjali food business. ये अपने आप में इसलिए historical day है. 690 में 690 करोड़ रुपए में हम लोग 662 करोड़ रुपए का लगभग 700 करोड़ रुपए का बिजनेस 4174 करोड़ रुपए का 4174 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है उसको हम एक स्लम सेल के तहत 690 करोड़ रुपए में दे रहे हैं और उसका पूरा आज दोनों ही कंपनियों का इससे पहले जो भी उसका लीगल प्रोसेस था जो उसकी कमेटी बनाई गई थी इस पूरे बिजनेस को पूरा एक्विजिशन के लिए सबने करके बोर्ड ने आज उसके लिए परमिशन दे दिया कि ये 690 करोड़ रुपए में हम बिजनेस दे रहे हैं स्लम सेल के तहत 4174 करोड़ का जिसका कि नेक्स्ट ईयर का प्लान हमारा 5200 करोड़ रुपए का टर्नओवर का है जिसमें 8 वर्टिकल हैं हमारे जो है स्टेपल्स हैं जिसमें हमारे सब प्रकार के फ्लोर्स हैं पल्सेज हैं और फिर पूरी स्पाइसेज हैं सबसे बड़ा ब्रांड हमारा इसके अंदर पतंजलि गाय का देसी घी है और ऑयल्स हैं टोटल हमारे जो वर्जिन ऑयल्स हैं फिजिकल रिफाइंड ऑयल्स हैं सारे प्रीमियम ऑयल्स हैं बेवरेजेज हैं हनी है हमारा च्यवनप्राश और पावर वीटा और भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो एक एक बिजनेस अपने आप में एक बहुत इनक्रेडिबल बिजनेस है उसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं गाय के देर इज नो कंपटीशन इन काउज घी देर इज नो कंपटीशन इन आंवला एलोवेरा जूस देर इज नो कंपटीशन इन कच्ची घानी कोई हमारे बराबर में खड़ा नहीं होता है नो कंपटीशन नो कंपैरिजन ऐसा बिजनेस है और All food business is dependent on trust. The trust level of Patanjali food is very high. और उसको हम इस कंपनी को आज जो पूरा और फूड बिजनेस ही नहीं दे रहे हैं, पतंजलि फूड लिमिटेड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड ये नाम भी हम दे रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही इधर तो सारे बोर्ड ने उसको अप्रूवल दे दिया, अभी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी अप्रूवल आ जाएगा। तो ये एक बड़ा बड़ा कदम होगा कि क्योंकि पतंजलि एज ए उसका जो ब्रांड इक्विटी है इज वेरी हाई, द रीच ऑफ पतंजलि इन इंडिया इन ऑल ओवर वर्ल्ड इज वेरी हाई। हमारा कम से कम दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों तक हमारी रीच है, इतना बड़ा पतंजलि का ये रीच, और उसमें हमारा जो कस्टमर बेस है वो इंडिया में बहुत बड़ा है, और हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, पूरा ह्यूमन कैपिटल के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ, और किसी भी प्रकार की विदाउट एनी लायबिलिटी और नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के साथ जो है हम ये बिजनेस पूरा ट्रांसफर किए हैं, और इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट मार्केट इन ऑल ओवर वर्ल्ड एफएमसीजी की दृष्टि से देखें तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ फूड, और अब लोग इंडिया में जो एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ब्रांड थे अब वो ऑर्गेनाइज ब्रांड के ऊपर लोग अब कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और एक एक जो वर्टिकल का जो पूरा का पूरा यदि हम उसको इवेल्युएट करें कि एक एक वर्टिकल का कितना बड़ा बेस है, कितना बड़ा उसका बाजार है, साइज ऑफ मार्केट इज वेरी बिग, और उसमें हम कितना आगे बढ़ सकते हैं तो स्काई इज द लिमिट, इतना बड़ा है, और उसमें ये एक बड़ा कदम होगा, और इससे इन्वेस्ट जो जो जिन लोगों ने हमारे साथ शुरू से ही एक पार्टनरशिप के तौर पर, इन्वेस्टर के तौर पर हमारे साथ आए थे, आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन है और आने वाला फ्यूचर भी बहुत बड़ा है। मैं क्योंकि इसको कुछ जो भी लीगल बाउंडिंग है उसके तहत ही बात कर सकता हूँ, लेकिन यदि 15-20% मार्जिन का बिजनेस यदि किसी कोई बिजनेस मर्ज किया जाता है तो उसका बाजार में कोई कहता है 30, कोई कहता है 40, कोई कहता है 50 जो है उसको मल्टीपल मिलता है, तो आप इसको किसी भी तरह से कैलकुलेट करते हैं तो ये इतना बड़ा कदम है जिसका कि आगे इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो और बात और इसके पीछे बेस है हमारा करीब 30 इयर्स का, कुछ ब्रांड इसमें हमारे 30 इयर्स ओल्ड हैं, जैसे हमारा च्यवनप्राश है, हमारा हनी है, ये 30-30 साल पुराने हमारे ब्रांड है जो हमारे कभी दिव्य फार्मेसी में हुआ करते थे और उसको हमने पतंजलि में मर्ज किया, और कुछ ब्रांड इसमें 15 साल पुराने हैं, जैसे हमारा गाय का घी है और बाकी बहुत कुछ है। तो 15-30 इयर्स का इसके पीछे एक ब्रांड का जो है ट्रस्ट हिस्ट्री है, और आगे भी इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा सारे इन्वेस्टर्स से, ये हमने जो कमिट किया था उसको 100% अब तक डिलीवर किया है। हमने बोला था हम बिस्किट इसमें मर्ज करेंगे, वो हमने मर्ज किया। हमने बोला था फूड हम इसमें मर्ज करेंगे, वो हमने मर्ज किया। और हमने बोला था कि इसको सिलम सेल में जो भी कम से कम मूल्य में अधिकतम हम इन्वेस्टर्स का फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स हमारे साथ में लॉयल्टी के साथ जुड़ेंगे उतना ही हम एक दूर की यात्रा तय कर सकेंगे। तो हम एक लॉन्ग टाइम जो है पार्टनरशिप के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, और हम जितना भी फायदा पहुंचा सकते हैं, हमने कहा था कि हम डेट फ्री करेंगे, डेट फ्री किया हमने कंपनी को किया, और अब इसका साइज जितना बड़ा होगा, एक तरफ कॉमोडिटी बिजनेस जो उनके आने वाले कम से कम 5-10 साल के लिए एक अलग प्रकार का उसमें ब्राइट फ्यूचर है, चैलेंजेस जरूर आम जो लोग हैं उनके लिए होंगे, लेकिन एज ए बिजनेस कॉमोडिटी बहुत बड़ा बिजनेस होगा, उसमें फूड अब क्योंकि बिस्किट और फूड इतना बड़ा, यदि उसके वर्टिकल्स देखें तो इतना बड़ा हो गया है। और ठीक है, बस मैं यही कह रहा था कि मूल बात तो मैंने रखी दी थी कि जो है कॉमोडिटी बिजनेस, फूड, न्यूट्राच्यूटिकल और पाम प्लांटेशन का करीब 15 लाख एकड़ पर हमारा प्लान है, जिसमें लाखों एकड़ के हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं और उसको एग्जीक्यूट करने में हम लगे हुए। तो हमने जो कमिट किया था वो सबका सब हमने 100% उसको हमने एग्जीक्यूट किया और आगे भी करेंगे। बस मेरा सबको बहुत बहुत प्रणाम
जी। धन्यवाद स्वामी जी।
थैंक यू। थैंक यू
सर। शुड वी स्टार्ट द फ्लो फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर?
वी कैन डू दैट। कैन आई जस्ट टेक अ ब्रीफ जस्ट कपल ऑफ मिनट्स जस्ट एड टू व्हाट स्वामी जी इज ऑलरेडी सेड and give some specific details. So my name is Sanjeev Asthana and I'm giving you the details of what occurred today, and I will take just few minutes and then the floor is open and we are willing happy to answer any question. So basically what we are moving is you know, the foods business with 536 SKUs that are spread across 8 product categories like staples, edible oils, beverages, spices and condiments, cow, ghee, honey, herbal products and dry fruits. And there are some marquee products like, for example, cow ghee is more than 1,000 crores a year. Similarly, Chyawanprash, similarly, aloe vera juices, you know, Patanjali honey. So there are a lot of good and solid products and product lines which are moving. This is one part. The second is that, you know, consistently we are seeing a growth rate in Patanjali food business for last 3 years. And constantly that needle has kept on moving forward. So we are hoping to keep the momentum and in terms of the year, this next year, as we follow with the same one. You know, compared to the industry growth again, Patanjali business has done way better as it continues to move forward and has done well. Patanjali's distribution reach, just to re-emphasize, is extremely high along with Ruchi. So together, for example, the direct reach what Patanjali has is more than, you know, 5.5 million retail outlets. Ruchi has additional reach to retail outlets of nearly 500,000. We've got 100 depots across the country. We've got 4,700 distributors. And indirect access to customer touch points or retail points is additional 1 million for Patanjali. So that is the distribution side. We are getting the business along with, you know, all the brands, for which, you know, there is a 1% brand, you know, license fee is what we'll pay on the revenue for keeping Patanjali's, you know, brand in the in Ruchi Soya for the usage of the brand. Likewise, the transaction has been done on a slump sale basis, where, you know, the consideration amount is 690 crores that we are paying. And in addition to that, this is going to be a fairly significant, you know, step, because our proportion of the FMCG part of the business is going to substantially pick up. So we are expecting that this year our FMCG portfolio should be about 18 to 20% of the overall revenue size, compared to just about 8%, you know, what we had last year or the years before. So that component is going to increase, and we continue to work and drive that entire process. We are moving in the entire team of Patanjali Foods, you know, at least all the direct business people, as well as the shared services resources. And the transaction is subject to the shareholders' approval and other regulatory approvals. We are expecting this transaction to go through in the shortest possible time. So endeavor is that we close it at the earliest possible. So this broadly is a brief summary. And Rajesh, if you want to add something, otherwise then I'd like us to open the question. One more thing to all of you. This was the first time, and there was some technical glitch what we had. So my apologies for us having started the meeting about 6-7 minutes late, and we've taken note of the problem, and in the future it will not occur. Rajesh,
I'm Kumar Rajesh. Yes, sir, I am Kumar Rajesh. Almost all the things has been explained by you, sir. There is nothing which need to explain, but I would like to just highlight one point. We are sitting over this business under the slump sale methodology, and one thing I would like to highlight before you all, that we are not taking any bank loan, any creditors. I mean to say that not taking any liability, except for some liability of PF and gratuity for the employees, pertaining to the employees. So this is the undertaking consists of only and only assets, land, building, plant and machinery, and inventories, infrastructures, etc. So that's.
So now we can open the floor for questions.
Yeah.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one at this time. First question is from the line of Chetan Shah from Jeet Capital. Please go ahead.
Yeah, hi. Sir, thank you for a detailed update. I have two very specific questions. Going by the way food prices are going up and there is an inflation pressure and there is also a cost of farming is going up, can you give us some color and sense how do this can have an impact on our business in terms of raw material sourcing? That is the first question. And sir, second question I have about our distribution network. In our presentation, the exchange thing which we have mentioned that we are present in some 26 odd state and almost 4.5 lakh retail touch point. So sir, can you give us some flavor about the town, cities and a large city, how this distribution network is and what is the plan for next 3 year time horizon compared with other FMCG players in the country? That's it from my side and congratulations and all the best to entire team for such a super execution of deals.
To answer your question on the food inflation side, what you mentioned, that raw material impact are, so we've got three businesses which have got, or maybe four businesses which have a direct impact on the food inflation. One is the edible oil. Edible oil, as you know, is basically a pass-through business where the prices change virtually every day. In fact, 3 or 4 times a day. So that becomes a pass-through, which means that if you are procuring at a higher value, largely you are passing it on to the consumer. So other than the inventory, gain or negative, what might occur, in general, the risk levels in edible oil is only to the extent of the inventory that you hold, in which the prices may move up or down. But structurally, there is no problem on the edible oil side. The second business that we have, which has got exposure, is our biscuit business, which has got exposure on at a 3-4 big levels. One is the grains that we procure, the atta that we procure from wheat. Second is the edible oils that we have to use. Third is the sugar. Fourth is the packing material. And so that clearly that inflation is putting a lot of pressure on all the biscuit companies. And especially because the prices of raw materials have moved up substantially. The price points at the consumer end are very difficult to change, especially in the category of 5 and 10 rupees. So there our strategy has been two parts. One is that, we've looked at downsizing in terms of the grammage that we give in the biscuits. We have sort of slightly reduced that. We are trying to build up our premium portfolio where we're trying to take the prices up. And we are also introducing mid-category packaging where we are able to offer to the consumers the value that a mid-pack can offer, and basically to mitigate the cost pressure that the company faces. But clearly that cost pressure is there. We are using multiple different means of managing that inflation to ensure that we maintain our EBITDA. And we'll have to see in the days to come as to how that goes. The other two businesses, which is basically going to be Patanjali Foods business and Nutraceuticals, there, while this pressure remains, but our, the premium that we command and the value that is there is fairly healthy. So our ability to absorb the additional raw material cost is significantly better than compared to the biscuits business. So to that extent, I would say our exposure is there, but not to that extent where our 100% dependence is on only the raw material sourcing. And to that extent, we are relatively safe. Coming to your second question on the distribution, our distribution, when we mentioned the presence across 26 states through the retail touch points, so Patanjali has very extensive distribution network. They have got mega stores, Arugya Kendras and Chikitsa Kendras, which are dedicated outlets which are selling Patanjali products. So that is one source of access which is across the country. Second is through the general trade channel, through the super stockist, distributor and retail touch point. That is extensive. Combined with Ruchi now, That becomes almost a million retail outlets that we have access into. We've got additional retail access into almost indirectly about a million more outlets. And we are continuously working on expanding. So, for example, like I'll talk about the Ruchi side businesses. For like nutraceuticals, we're adding nearly 10,000 retail outlets every month. In the biscuits business, we continue to expand. Every town with 20,000 population and above, our presence is there through distributors and retail touchpoints. So that is a work in progress. And we believe that we should be able to, from the current network that we have, we should be at least 50% more in next 3 years' time. From a retail, you know, access point and the distribution that we are putting in place.
Yeah. Thanks, sir. Just one last small follow-up question, sir. If we see our product portfolio, we are more focused on a mid-size, mid-range, more affordable category. Do we have any specific plan for going into premium and super premium category in a time to come? And is there any specific strategy which we have kind of talked about where there is a better you know, brand premium and a product premium which we as a Patanjali or as a Ruchi can command? If you have any specific things which you can share, will be very helpful, sir. That's it.
No, sure. No, absolutely. So I'll just take a quick 30-second answer to that. We have several premium category products. So, for example, Nutrela Buddy, which is the most premium selling in the soya chunks category, is there. Likewise, nutraceutical, all the products are fairly upmarket but affordable. To that extent, it is, you know, the price point at which they are sold is quite expensive. Similarly, in the biscuit business, you know, we have got digestives and cookie cream crackers and biscuits, etc. So we are introducing constantly more premium end products to for a better price realization and very mindful of what we intend to do. And this is something which has constantly been a support factor for us, but we are now building that up. Especially we realize that biscuits, etc., we need to have a blend of both sides. You need to have an economy offering as well as a premium end offering. So on that, we are continuously working.
Thank you so much and wish you all the best, sir. Thanks.
Thank you, sir.
Thank you. The next question is from the line of Chetan Jindodia from Alpha Accurate Advisors. Please go ahead.
Hello, sir, and congratulations to you for executing this in a very rapid and fast manner. Sir, wanted to understand on, you know, the growth of the acquired Patanjali food business going ahead. So, you know, what is the strategy that we are looking at? You know, you are guiding for 20-25% kind of growth next year itself. So, you know, what kind of what will be the source of this growth? Are we looking at market share gains, and what has been the growth in the last 2 to 3 years?
Okay, so growth typically, as we mentioned, that we've done significantly better than the industry. Our growth rates, you know, have been nearly 15-25% range in the last 2 years, and we expect to maintain the same momentum. And that's why we are projecting that we should be able to reach 5,200 annualized numbers, because by the time the food business you know, comes into Ruchi Soya, it is going to be some time, maybe 1 or 2 months. That is why. The strategy is very clear that we continue to expand at levels of A, expanding our distribution, B, launching constantly new products in different product areas, and C, that we're working on it, that basically drives the revenue category and the growth in those segments. And all of them in general are growth segments. So, you know, for example, whether it's the honey, whether it's the Chyawanprash, cow ghee, which is a large category, edible oils, etc., we are seeing consistent move away from, you know, the traditional non-branded, loose, you know, consumers are moving to the branded ones. And Patanjali, they associate with health and nutrition and, you know, wellness. So in general, we have found that, you know, especially in edible oils, cow ghee, Chyawanprash, aloe vera juices, etc., market share is continuously growing. So we are consistent with the market, and we are reasonably confident of achieving all these numbers.
एक बात मैं एड ऑन करना चाहता हूँ. हमारी केस हिस्ट्री है, हमने 10-20% से लेकर के और 100% भी ग्रोथ दिया है अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में. हमने पिछले 2 सालों में 3 सालों में मार्केट में सेल्स एंड मार्केटिंग में पैसा थोड़ा कम खर्च किया था। अभी हम हमारे पास में जो है वर्किंग कैपिटल की फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर नया नहीं, कोई नया खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम सेल्स मार्केटिंग में थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो 25 नहीं अलग अलग प्रोडक्ट में हम 50% और 100% भी ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटी है, ये हमारी ब्रांड इक्विटी है और ये हमारी हिस्ट्री भी है, इसलिए 20% 25% ग्रोथ इज नॉट ए क्वेश्चन फॉर पतंजलि और
नंबर। जी स्वामी,
ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक वन थिंग मोर वांटेड टू अंडरस्टैंड, जो इबिडा मार्जिन, सो 15-16% इबिडा मार्जिन दैट दिस बिजनेस हैज, सो दिस इज इंक्लूडिंग एड स्पेंड और दिस इज एक्सक्लूडिंग एड स्पेंड, एंड यू नो हाउ डू यू सी, आर देर एनी मार्जिन लीवर्स गोइंग अहेड, और यू नो आर फोकस विल बी ऑन रेवेन्यू ग्रोथ?
नो सो जी,
बहुत थोड़ा ही हमने, क्योंकि ज्यादा हमारे मार्केट इसमें डाला ही नहीं था, तो थोड़ा बहुत जितना खर्चा हुआ उतना डाल करके ही है, बहुत ज्यादा खर्चा हमने किया ही नहीं पिछले 2-3 सालों में, ज्यादा खर्चा किया ही नहीं। इस साल थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट किया है, तो अभी इसमें ज्यादा सेल्स मार्केटिंग में हमने अभी ज्यादा खर्च किया ही नहीं था, बहुत सामान्य खर्चा है।
ओके, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू संजय जी, एंड ऑल द बेस्ट।
Thank you. The next question is from the line of Akhilesh Bagri, individual investor. Please go ahead.
Hello.
Yes, sir. Please go ahead.
Yes. I just wanted to ask one question about the royalty arrangement. This 1% fee will be on the overall gross revenues of Ruchi Soya, which includes the edible oil part of the business also, or is it just on the categories which are being transferred from Patanjali to Ruchi Soya in this transaction?
Rajesh ji, please answer.
Yeah. So, sir, this is Mark Rajesh. So, this 1% is on the item transferred from the Patanjali to Ruchi Soya only, based on transfer of that items. Not on overall basis.
Okay, so our existing edible oil business, etc., that turnover is not included in this calculation?
No, that turnover will not be included.
Okay, thank you so much, and congratulations to the whole team.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Bharat Shah from ASK Investment Managers. Please go ahead.
Namaskar Swami ji.
Pranam Bharat ji, pranam.
Pranam. Namaskar Asthana sir.
Namaskar Dhrupal bhai.
First of all, congratulations for a remarkable kind of a portfolio which has been graciously handed over to Ruchi. I read with a lot of interest कि ये जो फूड प्रो पोर्टफोलियो विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड वुड ग्रो एट द रेट ऑफ 25% एंड मोर ओवर नेक्स्ट मेनी इयर्स, सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इज दिस अ रीजनेबल असेसमेंट और आर वी बीइंग अ बिट मोर एम्बिशियस?
भरत जी, मैं 2-3 बातें बोल देता हूँ। जैसे आंवला एलोवेरा जूस है, ये हमारा बहुत हाई प्रॉफिट वाला और मतलब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सम्मिलित प्रोडक्ट है। कुछ लोगों ने ऐसा उनकी सुबह शुरुआत ही जैसे कुछ लोगों की चाय कॉफी से होती है, तो वैसे आंवला एलोवेरा जूस से होती है। और आंवला एलोवेरा जूस इस देश में पहली बार बनाना पिलाना हमने ही सिखाया। एमवे जैसी कंपनियां कुछ बेचती थी पहले, वो बहुत लिमिटेड था। मासेज के अंदर आंवला एलोवेरा जूस, आंवला तो जूस को बेचता ही नहीं था, तो इसमें तो अपन और कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, नए कस्टमर एड ऑन करना है इसमें, कोई किसी के, हमारा ही मार्केट लीडर हम ही है, तो उसको हम आज यदि हमारे मान लीजिए 2 करोड़ लोग आंवला एलोवेरा जूस पीते हैं, तो हम उसमें 4-5 करोड़ में कैसे जा सकते हैं? तो थोड़ा एक वो उसमें भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन बिना कॉम्पिटिशन के। हनी और च्यवनप्राश में एक हमने ऐसा पहले एक बार किया था कि हम डाबर से अब ऊपर चले गए थे हनी में और च्यवनप्राश में भी, थोड़ा उसमें एडस्पेंड भी किया था हमने, एक एंटियन भी किया था और नीचे कई तरह से सेल्स टीम का इन्वॉल्वमेंट, रिटेलर्स का इन्वॉल्वमेंट और कई तरह से उस चीज को आगे बढ़ाया था। तो इस बिजनेस में भी 50% तक तो मुझे कोई 50% तक की ग्रोथ में तो कोई चैलेंज दिखता नहीं, वो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो अपना थोड़ा एडजस्टमेंट स्पेंड कम कर दिया था, वापस थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा उसमें सेल्स मार्केटिंग में खर्च करेंगे तो हनी च्यवनप्राश में हमारा अभी जितना साइज है उसका डबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बात आती है घी, घी में भी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है अभी, बस ये बटरा आदि का दाम बढ़ने से तब भी हमारा कोई सेल गिरा नहीं, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 650 रुपए में घी खरीद रहे हैं लोग। हमने अब इसमें यह है कि गाय का घी का क्रेज बहुत बढ़ रहा है लोगों में कोरोना के बाद, तो इसमें भी हम लोगों का देर इज नो चैलेंज, नो थ्रेट, नो कंपटीशन, नो एनीथिंग, हम जितना कर पाएंगे उतना कर सकते हैं। कच्ची घानी सरसों तेल और ये फिजिकल रिफाइंड ऑयल, अब पूरे देश में मैंने देखा है पिछले 2-3 इयर्स से कि लोग जो है नेचुरल फैट माने घी, फिर नेचुरल ऑयल, वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, और ये मान रहे हैं कि फिजिकल रिफाइंड ऑयल ज्यादा बेस्ट है। अब रिफाइंड ऑयल के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, लेकिन एक तबका है बहुत मासेज का जो कि रिफाइंड ऑयल खाएगा, लेकिन हम एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट फिजिकल रिफाइंड ऑयल और कच्ची घानी सरसों तेल जिसमें कि पतंजलि लीडर है, उसमें दूसरे ब्रांड्स वो इसीलिए उनसे कम्पीट करना पतंजलि के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तो मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ जो अच्छे प्रॉफिट वाले बिजनेस है हमारे, बाकी आटा नमक और ये साधारण चीजें हैं जो 3-4% प्रॉफिट वाले बिजनेस हैं। और अभी आटा अभी तो गेहूं का बीज का रेट बढ़ने से उसमें बहुत चैलेंजेस हैं, प्राइस में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं आटे को बहुत ज्यादा इसमें तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, आटे से कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी आने वाला नहीं है और वो उसकी हमें कोई ज्यादा चिंता भी नहीं है, वो जितना नेचुरल ग्रोथ है वो हमारे लिए इनफ है। लेकिन उसमें भी हमने अलग अलग प्रकार के मिलेट्स को बहुत सम्मिलित किया हमने, तो मिलेट्स को हम बहुत बढ़ा सकते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट भी है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। स्पाइस में हम लोग कितना ही बड़ा काम कर सकते हैं, अभी मैंने विद इन 2 मंथ 2 महीने मैंने थोड़ा एड कैंपेन चलाया तो हमारा 30% का ऑलरेडी ग्रोथ है, 30% का। हम यदि इसमें थोड़ा एड कैंपेन थोड़ा बढ़ा दें, पतंजलि नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, मसालों में आप देखते हो 10 तरह के ब्रांड हैं, MDH से लेकर के एवरेस्ट से लेकर जो बड़े ब्रांड है, बाकी कोई गोल्डी मसाला है, कोई सुहाना मसाला है, कोई अशोक मसाला है, एक एक मसाले वाला हजारों कोई 500, कोई 800, कोई 1000, कोई 2000 करोड़ का बिजनेस करता है। तो हमारा मसालों में हम कितना ही बढ़ सकते हैं, इसमें तो भरत भाई मेरे को विश्वास है हम 100% की ग्रोथ ले सकते हैं। इस साल तो मेरा 100% की ग्रोथ लेने का इरादा है ही, हम अगले 2-3 सालों तक इसमें 100% की ग्रोथ ले सकते हैं। स्पाइसेस में इतना बड़ा गैप है, उसको हमने फोकस नहीं कर पाए थे जिस भी कारण से। तो ये मैंने थोड़ा अलग अलग पावर वीटा, दिस इज ए बिग ब्रांड, लेकिन उसके ऊपर एड स्पेंड हमने ज्यादा नहीं किया था, एक बार हमने बढ़ाया भी था तो अच्छा पहुंच भी गया था। तो पावर वीटा जो कि एक फूड सप्लीमेंट है, बहुत जबरदस्त है। तो इस हर एक प्रोडक्ट का यदि 8 प्रकार का हमारा इसमें पोर्टफोलियो है पूरा, तो अलग अलग में 25 से लेकर 50 और 100% की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। और लगातार हम यदि एवरेज आउट करें तो 25% की ग्रोथ हम कम से कम 5 इयर्स तक तो हम इसमें अभी आराम से सोच सकते हैं। तो ये 5 से 10 हजार करोड़ का बिजनेस होने में विद इन 5 इयर्स देर इज नो क्वेश्चन, मेरे को कोई उसमें दिक्कत नहीं लगती है। और ज्यादा कितना कर सकते हैं वो एक अलग बात है। तो जितना हम ताकत पाएंगे उतना ज्यादा, आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया हमारे इन्वेस्टर्स ने, तो अब तो हम मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर के और इस मार्केट के अंदर अपना धाक जमा पाएंगे बिना किसी कंपटीशन से और बिना किसी के कंपैरिजन के किए हुए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था भरत भाई जी प्रणाम।
जी थैंक यू। ये आत्मविश्वास और ये क्रेडिट की मैं सराहना करता हूँ। एक दूसरा मुझे पूछना था, जैसे आपने बताया कि कई लोगों के दिन की शुरुआत आंवला जूस से या एलोवेरा जूस से वगैरह से शुरू होती है, उसमें वो लिस्ट में एक नाम मेरा भी है सर। मैं एक प्रश्न मैंने हमेशा महसूस किया है कि कई सारी प्रोडक्ट्स है पतंजलि की जहाँ डिमांड सप्लाई या अवेलेबिलिटी से बहुत ज्यादा है, कि वो प्रोडक्ट्स की डिमांड है लेकिन आसानी से ईज से वो आपके घर तक पहुंचता है उसमें थोड़ी बाधा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पतंजलि की बड़ी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मैं मानता हूँ कि डिमांड सप्लाई से कई सारी प्रोडक्टों में कई तरह है, तो ये मामला सलजाना को
इसको करेंगे। इसमें मैं सोर्स में ये बताऊँ, जैसे क्या दरअसल मैंने इसलिए बातें आपको बताई, देखो मैं ये सारा ब्रांड हमारे अपने हाथों का खड़ा किया हुआ है, और जो आपने बताया इसमें हमारे करीब 8-10 4-5 जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एसडी थोड़ा चैलेंजिंग है, तो उनको हम सॉर्ट आउट करके विद इन 1 से 2 महीने के भीतर जो एसडी थोड़े प्रॉब्लमेटिक है उन्होंने क्या किया, पूंजी जो है वो डाइवर्ट कर दी, पैसा पतंजलि से कमाया, किसी ने लैंड में लगा दिया, किसी ने अपना इधर उधर पैसा इधर उधर डाइवर्ट किया और वो दिक्कत में आ गए थे। तो वहाँ हम जो अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको चेंज करने का एक बड़ा हमारे सामने चैलेंज कुछ भी नहीं है, वो अच्छे ही लोग हैं लेकिन थोड़ा नासमझी करके उन्होंने पैसा निकाल लिया, तो उनको हम अब इससे आउट करेंगे और नए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ेंगे। तो ये जो कई जगह जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो एकदम 100% एब्सोल्युटली राइट है, हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ठीक करके कंपटीशन और जो है मार्केट साइज और मार्केट शेयर ये सब शब्दावली वहाँ बेमानी है, हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करके ही 20-25% की ग्रोथ ले सकते हैं भरत भाई। हम ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मैं कोई मेरे को दिक्कत नहीं अपनी गलती स्वीकार करने में कि हमारे यहाँ कुछ ये कमियां हैं, इनको भी हम अभी जल्दी करेक्ट करेंगे, उसमें यदि कुछ थोड़ा बहुत लॉस होगा वो पतंजलि बेयर करेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई उधारी है दूसरी चीजें हैं वो हम रुचि सोया पर कोई आंच नहीं आने देंगे, अभी इतने हम कैपेबल हैं कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ लोगों का थोड़ा बाद में आएगा, कुछ लोग एसडीज को हटाएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी तो उसको हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन टेक्निकली हम डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट करेंगे। एक तो ये था जिसमें हमारे एसडी लेवल पर प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अलाइन करेंगे तो ये करीब एक ग्रोथ तो हमें नेचुरल मिल जाएगी, जो हैंगिंग जो हमारे सामने एक लो हैंगिंग जो फ्रूट्स बोलते हैं जिनको वो हमारे सामने हैं अभी। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को और बढ़ाना, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन को और बढ़ाना, इस दिशा में हमें और प्रयास करना पड़ेगा, और अपने एक्सपोर्ट को भी और बढ़ाएंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो इंडियंस रहते हैं वो पतंजलि का चाहे बिस्की चाहे और फूड प्रोडक्ट्स हैं सभी को वहां पर एक बहुत जबरदस्त डिमांड है, और उसमें भी हम 1000 करोड़ को आगे रेवेन्यू ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट पर भी अपने को और ज्यादा फोकस करेंगे तो वहां से भी आएगी। तो ये 3 दिशाएं और हैं जो नेचुरल जो हमारी ग्रोथ है उसके अंदर एड ऑन होने वाली, डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट करके और नीचे रूरल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट को हम और एक्सटेंशन करके इसको हम अचीव कर लेंगे भरत भाई
जी। थैंक यू स्वामी जी। एक लास्ट प्रश्न अस्थाना साहब, नाउ व्हेन द पतंजलि फूड पोर्टफोलियो मर्जेस विद द रुचि सोया एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, द सिनर्जी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, सिनर्जी ऑफ द मार्केटिंग एंड सेल्स रिसोर्सेज वुड बी एन इम्पोर्टेंट चैलेंज, पीपल चैलेंज, managing that synergy together would be an important issue. Any thoughts and any view from you?
Ji Bharat bhai, so your point is very valid, because then that is something which you are very seized of, that how do we rationalize the the duplication of resources and manage it within various businesses. For example, the whole marketing, promotion, branding, that entire piece, if you've got multiple different pieces sitting, there's a straight opportunity. Ground level distribution resources, there is a possibility to rationalize. Similarly, we are looking at the shared services like HR, accounts, supply chain, looking at IT resources, etc. We are seeing a great deal of synergy possibility. The only part is that all this is a work in progress. It will take time once the acquisition happens. Post that, we are already working on a plan. The teams are working, both the HR side, that how do we rationalize the positions and how do we work together. So I'm expecting two benefits. One is a clear-cut, more nimble and, smarter organization. Second is linked to that is the cost saving we'll have on rationalization of resources. And I'm also expecting that this should enable us to make one and one closer to, becoming three rather than one and one becoming two only. So that is work in progress, and we are working towards it. Including one more thing I forgot is the entire, the structured finance areas like vendor financing, distributor financing, consolidating those positions, risk management, treasury management, etc. I'm expecting a lot of synergies and value add as we go forward.
Jay, thank you. And
Swamiji,
itna significant portfolio. इतनी त्वरा से और इतनी अच्छी तरीके से ये ट्रांसफर हुआ है ये अपने आप में एक बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरी रुचि टीम पतंजलि टीम सबको मैं कहूंगा कि ये प्रशंसा पात्र है
नहीं आप 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 जैसे वरिष्ठ उनका हमें गाइडेंस मिलता रहता है और आपको हम एक इन्वेस्टर के तौर पर ही नहीं देखते हम आपको एक मार्गदर्शक के तौर पर भी देखते हैं और आप हमारी प्रेरणा भी हैं और हमारे विश्वास भी हैं और आप बड़ों से आप मैं साधु होने के बावजूद भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं लोग मुझे गुरु और बड़ा मानते हैं लेकिन हम आपको बहुत ही श्रद्धा भाव से देखते हैं तो आप लोगों ने सिखाया है कि जो करें उसको प्रामाणिकता से करें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करें आपने मुझे दो तीन बड़ी सीखें दी है मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ कि अपने काम पर फोकस करें हम बाकी चीजों को इधर उधर कुछ भी नहीं देखते और जो हमने कमिट किया उसको हम टाइमली पूरा करके और आगे बढ़े और किसी भी तरह की बिना किसी उधेड़ बुन के किसी भी तरह से इधर उधर नहीं देखना बस अपना टारगेट अपना फोकस है उधर हम आगे बढ़ रहे हैं मेरा बहुत प्रणाम आपको भरत भाई
थैंक यू फॉर वेरी वेरी काइंड वर्ड्स deeply respected and appreciated.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Varinder Bansal from Omkara Capital. Please go ahead.
Hello.
Hi, Namaste, sir. Pranam.
Namaskar, namaskar. Thank you so much for taking my question. Namaskar, Swamiji, and namaskar everyone else. Achha, sir, mera ek bahut chota sa question tha. My name is Varinder Bansal from Omkara Capital. रुचि सोया या पतंजलि फूड्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं सर या जिस तरीके से आप बात कर रहे हो मैंने एक चैनल पे सुना स्वामी जी बात कर रहे थे कि इस कंपनी का सेल्स कुछ 1,00,000 करोड़ भी हो सकता है आगे जाके अगले 2, 5, 10 साल में हो सकता है ऐसा विजन है आपका सर थोड़ा सा बात करेंगे प्लीज आप टीम पे आई नो कि अभी आपकी टीम में बहुत काबिल लोग हैं राम भरत जी हैं संजीव कुमार जी हैं संजीव खन्ना जी हैं बट जब कंपनी का साइज इतना बड़ा बन जाएगा तो आई एम श्योर कि आगे जाके आप टीम को और स्ट्रेंथन करना चाहेंगे
जितना शॉर्ट का आपका क्वेश्चन है उतना ही शॉर्ट उत्तर दे देता हूँ देखो अभी भी हमारे पास में हमारे सीईओ एमडी से लेकर के सारे लोग बहुत काबिल हैं अब इसमें मैंने ऑलरेडी हमारा मैन पावर का पिछले 6 महीने से कूटनी चल रही है तो एक्सपोर्ट के लिहाज से इंडियन बिजनेस को फूड को लीड करने के हिसाब से न्यूट्रास्यूटिकल्स को लीड करने के हिसाब से और बहुत ही कैपेबल लोग जिनका बहुत एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है एक्सीलेंट जो परफॉर्मर्स हैं और नेशनली इंटरनेशनली जो नॉन लोग हैं उनका स्क्रूटनी ऑलरेडी चल रहा है हमारे उसमें करीब 2-3 लोग तो अभी ज्वाइन करने वाले हैं 4-5 लोग अभी पाइपलाइन में है जो मतलब बहुत ऊंचे दर्जे पर माने जिनका एक करोड़ से लेकर के और 5-7 करोड़ तक का जिनका पैकेज हम सोचते हैं, ऐसे लोग हम उनका हमारा ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुके हैं, स्क्रूटनी हो चुकी है, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे रुचि सोया की टीम में भी बहुत कुछ और, जैसे को कहते हैं ना वर्ल्ड रिनाउंड नेम्स आप इंक्लूड होता हुआ देखेंगे बहुत जल्दी। तो ये काम ऑलरेडी चल रहा है और क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा आगे का टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए ये जरूरी है, तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। और बाकी हमारा जो ये तो एक बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, हमारा जो पाम प्लांटेशन का उसमें हमारे पास जितनी टीम है एक्सीलेंट टीम वो बहुत बड़ी है। ऐसे ही हमारी फूड में भी बहुत जबरदस्त, बिस्किट में बहुत जबरदस्त टीम है, तो नीचे के लेवल पर हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है।
नहीं स्वामी जी, आपका
लीडरशिप में बहुत बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं और जिनका सच में जो परफॉर्मर रहे उनकी हमारी तलाश जारी है, उसका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ पाइपलाइन में जल्दी आपको ये दिख जाएगा।
तो स्वामी जी ईस ऑफ पॉलिसी क्या होता है कंपनी का, जो जो ये सीनियर मैनेजमेंट पे आते हैं लोग आते हैं ज्वाइन करते हैं, इतने अच्छे लोग आते हैं, ईस ऑफ पॉलिसी क्या है कंपनी का, सबको ईस ऑफ मिलते हैं सर?
अब देखो इसको आज ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है तो, लेकिन जो भी एस्टेब्लिश जो पैरामीटर्स है ना, जिस तरह से मार्केट बिहेव करता है उस तरह से सारी चीजों को हम यहाँ पर करेक्शन कर रहे हैं, पहले जो नहीं था उसको भी हम बहुत चीजों को लेकर के आ रहे हैं।
अच्छा स्वामी जी, क्या मैंने सही सुना आपसे एक किसी इंटरव्यू में कि आगे जाके आई विल नॉट पुट
ये 1 लाख करोड़ की कंपनी तो आगे होगी ना, इसमें तो कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना।
ओके कितने सालों में सर आपका विजन क्या है, मतलब आज की टाइम में अगर मैं देखूं तो लगभग कितना 27-28 हजार करोड़ का सेल्स होता है अगर मैं दोनों बिजनेसेस को साथ में ले लेता, राइट?
अरे भाई आप, मैं तो इतना ही कहता हूँ ना, अब आप जितना ये दरअसल ना ये इसके लिए क्वेश्चनिंग इसलिए नहीं है, हम एडिबल ऑयल से लेके फूड से लेकर के बिस्किट से लेकर के और न्यूट्रास्यूटिकल से लेकर के और फार्म प्लांटेशन, इतना बड़ा एक एक का मार्केट साइज है। और जिस तरह से मैंने कहा ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ता जा रहा है, और उसमें अब पतंजलि से बड़ा और ट्रस्टफुल कोई ब्रांड दिखता नहीं है। और हम हमारी जो योजना है मासेज और क्लासेज के दोनों का मिक्स हम लेकर के चल रहे हैं, तो किसी भी तरह से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हमारे लिए। तो ये आने वाले 5 सालों की एक बड़ी योजना है, उसको आप बहुत उसमें 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी बात अप्रामाणिक नहीं बोलना चाहते, तो आप इतना ही मानिए।
सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, इंडिया में लास्ट 50 साल में हमने कोई बड़ा एग्रीकल्चर कंपनी नहीं देखा, जब भी हमने भारत का बात की है तो आईटी फार्मा ऑटोज का बात की है, ये पहली बार हो रहा है कि हम एग्रीकल्चर किसी कंपनी का बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। तो हम 55-60% जीडीपी है एग्रीकल्चर के, बट कभी कंपनी इतना बड़ा नहीं हुआ। बट आगे जाके सर, बिकॉज अगर इतना अपॉर्चुनिटी है सब अलग अलग सेक्टर्स में जिसको आप देख रहे हो, तो कंपटीशन भी आ सकता है, राइट? अडानी विल्मर इज लिस्टेड, तो जो दिखता है सामने एक वो है, बट आपको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है सर कि 25-30% या 20-25% हम ग्रो करेंगे और कोई कॉम्पिटिशन आएगा नहीं उन एरियाज पे, यू नो, स्लो डाउन करने के लिए? बिकॉज और सारी एफएमसीजी कंपनीज कहीं ना कहीं 4-5 साल से मेरे ख्याल में 10% भी ग्रो नहीं कर रही है।
अच्छा देखो भाई, हमने ये जो पूरा पतंजलि का पिछला 12 सालों का बड़ा हिस्ट्री है, और जिस तरह से हमने D1 से क्रैच से जीरो से स्टार्ट करके हमने जो कुछ किया है, अब इसमें हमको कोई बोलना हमारे लिए तोहिन जैसा है, क्या बोले हम, हमने करके दिखाया, आगे भी करेंगे। और जहां तक बात है कंपटीशन की, हम कंपटीशन को कंपटीशन मानते नहीं, हम तो सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में जीने वाले लोग हैं। आप भी बताओ किसी भी बारे में जो आज तक हमने किया, योग में क्या कंपटीशन था हमारे सामने, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, और बस लगे हुए थे हम। ऐसी कौन आएगा, देखो फूड पार्क हिंदुस्तान के 70 वर्षों के इतिहास में एक नहीं बना हिंदुस्तान के अंदर और प्रॉफिटेबल नहीं चला, हमने चला दिया ना। जो असंभव बातें थी वो हमने संभव किया, जो कौन कहते थे 4 बजे जमाना उठेगा, हमने 4 बजे लोगों को उठा दिया, कौन कहते थे आंवला एलोवेरा पिएंगे, हमने पिला दिया, कौन कहते थे हिंदुस्तान में गाय का घी खाएंगे, हमने खिला दिया, कौन कह सकते थे हिंदुस्तान के अंदर एक जो है एक बीमार कंपनी उसका दो साल के अंदर का, मैंने जब शुरू में कंपनी टेक ओवर किया तो मैं तो भूल गया था कि हमने योजना बनाई थी कि हम 5 to 7 years में इसको डेट फ्री करेंगे, तो हमने 2 साल में डेट फ्री कर दिया ना, 10 years का प्लान था वो 2 साल में अचीव कर लिया। तो हम कॉन्फिडेंस से काम करते हैं और अपना कोई स्वार्थ है नहीं और काम करने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई फैमिली, ना कोई घूमना फिरना, ना कोई देश विदेश, ना कोई कुछ बनने का सपना, ना कुछ करने का सपना। एक पागलपन है कि हिंदुस्तान को का एक ऐसा वर्ल्ड लेवल का एक ब्रांड बनाना है, और ये पागलपन जब होता है तब चीजें प्रतिकूल स्थितियों में भी अच्छा काम कर सकते हैं। अभी तो हमारे सामने कोई प्रतिकूलता भी नहीं, और जो भी चैलेंज आएगा तो और मजे से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम।
नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, मैं यही सोच रहा था कि यू नो रुचि में ऐसा या पतंजलि में ऐसा क्या जादू की चढ़ी है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है, आपने बता दिया जो पागलपन है।
थैंक यू, पागल है हम लोग थोड़ा, जो पागल है हमारे साथ जुड़ जाना, बाकी लोग अनुलोम विलोम करना, जब पागलपन ठीक हो जाए तब आ जाएंगे।
थैंक यू सर, थैंक यू,
थैंक यू,
ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। रिमाइंडर टू द पार्टिसिपेंट्स, एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन मे प्रेस स्टार एंड वन। The next question is from the line of Surbhi Saraogi from Smith's Capital Markets. Please go ahead.
Hello. Hello. Am I audible, sir?
Ji. Namaste. Hello. Namaste. We are listening.
Sir, actually, I have a few questions. First, my question is, sir, what will happen to Patanjali's personal and body care products like soap, शैम्पूज, बॉडी लोशन, आर दे ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफर्ड?
ये कोई भी बिजनेस ट्रांसफर नहीं होगा, नो एनी मेडिकेशन, नो एनी हर्बल कॉस्मेटिक, दिस इज ए सेपरेट बिजनेस, और वो पतंजलि आयुर्वेद उसको रन करेगा, और उसकी ऑलरेडी अभी की कीमत उसकी कम से कम 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की है, तो इतना हम इतना मुफ्त खोरी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग प्रमादी हो जाए, तो हमने जितना दिया है बहुत है, वो एक अलग कार्यक्रम रहेगा।
Okay, and sir, my another question is, there are some products which are common and under both the companies, like cooking oil, and like if we think about soya chunks, Ruchi has its own brand of soya chunks and Patanjali has its own brand. So sir, what are your plans regarding the consolidation of this?
Non-compete agreement है बहन जी, कुछ भी नहीं होगा, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है। जो अभी हम फूड में कोई भी जो भी हमने बिजनेस ट्रांसफर किया वो कोई भी पतंजलि नहीं बनाएगा। अब पतंजलि नाम से पतंजलि की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, उसमें हमें यदि हमें ब्रांड वैल्यू ज्यादा मिलती है, प्राइस ज्यादा मिलता है, प्रीमियम प्रोडक्ट हम ला सकते हैं, तो वो सब होगा, लेकिन पतंजलि कोई भी फूड प्रोडक्ट जो हमने ट्रांसफर कर दिया उसको नॉन कम्पीट एग्रीमेंट कोई नहीं बनाएगा, और ये हमारी लीगल मोरल ये हमारी कमिटमेंट है हमारा।
ओके ओके सर, थैंक यू सर, गॉट इट।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ नरेंद्र पोरवाल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, प्लीज गो अहेड।
स्वामी जी नमस्कार साहब।
नमस्ते साहब।
सर सबसे पहले तो आपने जो बोला पागलपन नहीं कहूंगा मैं, आपको जुनून कहूंगा कि आपने जो बिजनेस करने का जुनून था और आपने जो 15 साल में जो अचीवमेंट कर दिखाया है सब, वो हमने तो ऐसा देखा है कि या तो प्रधानमंत्री जी मोदी ने किया है या आपने किया है कि रूरल इकोनॉमी को कैसे आगे लाना और कैसे अपनी एग्रीकल्चर को ग्रोथ बढ़ाना। सर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सर हम जो पाम ऑयल का जो बिजनेस का जो प्लांट कर रहे हैं, तो पाम ऑयल में हमारी और फॉरेंस की जो क्वालिटी होती है उसमें सेम क्वालिटी रहेगी या उनकी कुछ कॉस्ट कम आती है ताकि वो काफी कम प्राइस में दे पाते हैं?
अरे बहुत हम ऑलरेडी 1.5 लाख एकड़ जमीन पे कर रहे हैं और 15 लाख एकड़ जमीन पर करेंगे इंडोनेशिया मलेशिया से। क्वालिटी हमारी अच्छी होगी, मिट्टी हमारी अच्छी है, हवा पानी हमारा अच्छा है और कोई धमकी नहीं दे सकेगा। इंडोनेशिया मलेशिया बीच बीच में हमको धमकाता रहता है, कभी कश्मीर के ऊपर बकवास करते हैं, कभी इधर उधर की बकवास करते हैं, कभी थ्रेटनिंग देते हैं हम सब सप्लाई बंद कर देंगे, अभी भी उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। तो ये एडिबल ऑयल में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पतंजलि रुचि सोया बहुत बड़ा काम करने वाला है, तो किसी भी तरह से प्राइस आदि में किसी भी तरह से हम जो विदेश से आ रहा है उससे सस्ता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अच्छा
सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारा इतना बड़ा ब्रांड है और अभी रूरल में जिस तरह से एग्रीकल्चर में गाँव में लोगों के पास जिस तरह से पैसा आ रहा है और वहाँ से हाईएस्ट ग्रोथ आएगी, तो सर हमारा मार्केटिंग जो आपने अभी बताया कि हम किसी बड़े आदमी को भी लाएंगे, तो हमारा मार्केटिंग इस तरह का करके है कि हम 1% कहीं अपना मार्जिन करके अपना बिजनेस काफी बढ़ाएं, जैसे गाँव में क्योंकि एक बिस्किट में है तो आप पूरी एक ब्रिटानिया पार्ले कंपनी बन सकते हैं, या मसालों में जैसे बोला कि हम एवरेस्ट एमडीएच से बड़ी बन सकते हैं, साउथ जी में है तो अमूल बन सकते हैं, और हमारा तो एक सपना था कि अभी हम कभी पतंजलि के शेयर ले नहीं पाएंगे, लेकिन आपने ये हमें पदोती सोया का इशू ला के पतंजलि के शेयर दिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी हमने कि हमको कभी रुचि सोया पतंजलि का शेयर मिलता, नहीं तो हम पतंजलि ब्रांड का शेयर ही नहीं देख पाते कभी
ना। अब हम सब ओनरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी आप सबके सपने नरेंद्र जी सबको साकार करेंगे।
ठीक है सर, धन्यवाद। और बहुत आगे बढ़े सर, 1 लाख नहीं 2 लाख करोड़ की 3 लाख करोड़ की कंपनी बने, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आपका जो विजन है कि हर छोटे इन्वेस्टर्स पैसा कमाए और रूरल इकोनॉमी ग्रोथ हो और एग्रीकल्चर से ग्रोथ हो कि हमारी जीडीपी बढ़े,
तो
हमारा ये सपना है आपके साथ।
थैंक यू थैंक यू
थैंक यू
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रफुल अग्रवाल फ्रॉम ब्लू चिप फाइनेंशियल सर्विसेज, प्लीज गो अहेड।
प्रणाम स्वामी जी।
प्रणाम।
हाँ जी, पतंजलि ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्टेप के लिए। मेरे एक छोटा सा सवाल था कि हम लोग इन फाइनेंशियल्स को इन फिगर्स को अपनी फाइनेंशियल्स में कौन से क्वार्टर की शीट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
अस्थाना जी,
आपका प्रश्न मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं पड़ा, एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज?
ऑफकोर्स। तो इन विच क्वार्टरली फाइनेंशियल कैन बी एक्सपेक्ट दिस फिगर्स ऑन द शीट ऑफ दिस मर्जर?
वी इन द सेकंड क्वार्टर वी आर रीजनेबली एक्सपेक्टिंग दैट, इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन राइट, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस शुड टेक अबाउट 2 months, सो नेक्स्ट क्वार्टर 2 ऑनवर्ड्स आई थिंक वी शुड बी देयर समटाइम बाय मिडल ऑफ जुलाई।
Okay. All right. And how about the palm oil revenues from the palm oil plantation that will be coming in the company? When can you expect that?
So oil palm plantation is very much a Ruchi business only. Patanjali has no oil palm plantation business. So that is in the Ruchi. It continues to remain and we continue to expand in the area planned, etc. As Swamiji had mentioned earlier, that we continue to expand the oil palm business on our own. But that is, Patanjali has nothing to do with that.
Right. All right. Thank you. That's it.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Amit Jaiswani from Stallion Asset. Please go ahead.
Good evening, Babaji and Sanjeevji. So my question is on the plantation of palm. Okay. So what today our margins are 6%. Assuming अगर हम इंडिया से ही प्लांट करते हैं, what will be our margin in the oil business, in the edible oil business? Like, of course, we'll save on freight, we'll save on a lot of things. Will we buy at the market price from the farmers here? How will that plantation business work? Just trying to understand.
So I can quickly explain. Plantation business is a tripartite arrangement between the farmer, the government, and the company. And there is a fixed formula which is defined by CACP, which is the Commission on Agriculture Production Prices, which takes in the monthly prices, CNF Kandla basis of international prices, the oil extraction rate that we get, and how the farmers have to deliver. Basis that, there's an almost an assured margin construct that we have and in the business, and that margin construct is quite handsome. So it is more back-ended, the return as we get, but once the plantation starts to yield fruits, then the margin is nearly assured between 20 to 25% EBITDA is a consistent margin that we earn in that business.
Got it, got it. And do we invest money for the plantation or do we give some money upfront for the farm?
No, I'll explain that. So we basically, our expenditure is largely in the operational expenditure to begin with. It's more of either working capital or hiring of resources and very marginal capital capex in terms of hiring of basically getting jeeps, etc. And after 4 years and between 4th and 8th year, we are obligated to put in the oil palm mill for the processing purposes, and for that our capex goes, but that is more back-ended.
And there also there's a small support from the government. And under the new policy of National Mission on Edible Oil, that support is nearly 50% in case of Northeast. And it's also almost about 25% plus in the rest of India. So that support has gone up. So it's a basically very capex friendly business. There's not any, unlike Indonesia, Malaysia, our capex requirements are very low. Operating expenditure in the front end is high. And thereafter, it's a consistent income for next 25 years.
Got it. So yeah, so the 1.5 lakh acre which we've already started the plantations on, they will start yielding in 2025, 2026. Am I right?
No. So I'll just explain that. We already have yielding, you know, we have got 59,000 hectares which are already planted. We have taken a target to do 500,000 hectares over the next 5 years. And towards that, this particular year, because, you know, a lot of work is going on the nurseries and you know, the basically seed garden, etc. From next year, the momentum will pick up. So how oil palm plantation happens, that you plant what, let's say we do 25,000 hectares this year. So this will take, in the fourth year, they will start yielding fruits. And by sixth or seventh year, it fully matures. And then it, for next 25 years, keep planting. Next year, we plant another 50,000 hectares. So that will again be on fifth year, it will come. Year after we do 1 lakh hectares, it will come in year 7. So that's how it sort of keeps rolling forward. Every year, you keep planting more and more trees. And the yields will keep coming after 4 years partially. And between 7th to 8th year, it's a full blast. And thereafter, it is for next 25 years, you get the fruits.
Got it. And no other player can buy a palm oil from that farmer except you, right?
Yeah, it's exclusive. Under the mission of National Mission on Edible Oil, because the companies upfront are spending so much of money with the farmers for 5 years and 8 years almost. So that is why the farmers are obligated to sell to the company, and the company is obligated to make sure that they buy 100% of what the farmer produces. So no third party can come in and buy from your catchment area.
Got it. Is my understanding correct that in the next 5-6 years, this will be a very large competitive advantage, and all the trader community of the palm oil will be basically next to impossible for them to compete with players like you?
Yeah, so oil palm, nobody can get in because the long gestation business, you need to have obviously deep pockets, and more importantly, you need to be very capable to drive this business. So yes, there are entry barriers, and entry barriers are fairly significant. While on the face of it, a lot of smaller players have tried over a period of time, but none have succeeded very much in this area. So we are feeling very confident and fully committed to the business, and we are reasonably sure that over the next 5 to 6 years after that, the amount of, you know, the cash this business can throw for us is going to be extremely large.
So my last question on the in the current side, since we import a lot of palm, so how do we typically manage the volatility of palm oil? Like, because we also have a lot of inventory. How do we typically manage the raw material? Like right now, palm oil prices are very high. So how do we typically manage that? We don't have a few quarters of large losses.
So we do it two ways. One is obviously it's very policy driven and high discipline. So, you know, daily value at risk, mark to markets, constant tracking of prices, ensuring that, you know, we're de-risking ourselves. That is one. But you're right, when you are, because we are a long only position business, so we do carry inventory. Earlier, India had exchanges which the government has temporarily banned, like MCX, where we could hedge. Now we have taken an approval from the board and taken approval from, you know, our authorized dealer. We are going to be, taking, you know, hedging it on the overseas exchanges like BMD. So that is right now in the works. Today itself, the board is authorized to open a bank account in Dubai. So we'll be starting our hedges in the overseas exchanges.
That would be great. Thank you. Thank you so much, Babaji.
Thank you so much, Asanaji.
Thank you. The next question is from the line of Rushabh Shah from RS Capital. Please go ahead.
Good afternoon. My question is with respect to the brand equity. So whether the Patanjali brand is a part of the commercial agreement? And if no, then what is the commercial agreement between the Ruchi Soya and the parent company with regards to the usage of Patanjali brand?
Rajesh, you would like to answer that?
Yeah. So I'm Kumar Rajesh. I'm heading here the strategic final function. So as far as Patanjali brand is concerned, we have a separate agreement as a brand license agreement in which Ruchi Soya will pay 1% of turnover of the product which are being transferred to the Ruchi Soya from PAL. and this arrangement is made separate.
Okay, so this is 1% of the product which is...
Yeah, which is being transferred. This is not a part of...
Yeah, this is commercial agreement, not the part of the PTA.
Yes, not the part of the PTA.
Okay, and to the only turnover which is attributed to the products of PL.
Yeah.
Okay, fair enough. Thank you.
Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Mr. Abhijit Kundu for closing comments.
Thanks a lot Sri Baba Ramdev Ji and the management of Ruchi Soya, Asana Ji, Rajesh Ji, for giving us the opportunity to host the call. And thanks to all the participants for attending the call. Thanks a lot.
Thank you.
पूरे कीर्ति भाई जी की पूरी टीम को और आप सब लोगों ने जो पुरुषार्थ किया है, आपके पुरुषार्थ को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इतना समय दिया, सबने बहुत प्रेम से पार्टिसिपेंट किया, सबने बहुत बहुत प्रणाम.
थैंक यू प्रणाम सबको.
थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग, दैट कंक्लूड्स दिस कॉन्फ्रेंस कॉल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड यू मे नाउ डिस्कनेक्ट योर लाइन्स.